13वां अध्याय बर्मा। पहला, भारतीय उपनिवेशों का सूत्रपात। प्राचीन भारतीय साहित्य में जिन प्रदेशों को स्वर्ण भूमि कहा गया है, बर्मा भी उनमें से एक है। 15वीं सदी में उत्कीर्ण कराए गए कल्याणी के शिलालेखों में रामचंदेश का स्वर्ण भूमि के रूप में उल्लेख है। सुवर्ण भूमि रट्ट संघात रामंच देश। रामंच देश की स्थिति बर्मा में सालवीन नदी के मुहाने के समीपवर्ती प्रदेश में थी। बर्मा स्वर्ण भूमि का पश्चिमी अपरांत सीमांत प्रदेश था और भारत की पूर्वी सीमा उसके साथ लगती थी। दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य प्रदेशों के समान बर्मा के साथ भी भारत का संबंध सबसे पूर्व व्यापार के लिए हुआ, पर बाद में उपनिवेश बसाने और धर्म प्रचार के प्रयोजन से भी भारत के लोग बर्मा जाने लगे। बर्मा की एक प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति के अनुसार कपिल वस्तु का शाक्य राजकुमार अभिराज एक सेना के साथ उत्तरी बर्मा गया था और वहां उसने अपने राज्य की स्थापना की थी। इस राज्य के शासन के लिए उसने संकिस्सा तगोंग नगरी का निर्माण किया और उसे ही अपने राज्य की राजधानी बनाया। संकिस्सा नगरी इरावदी नदी की उपरली घाटी में थी। अभिराज के दो पुत्र थे। छोटा पुत्र संकिस्सा का राजा बना और बड़े पुत्र ने अराकान में अपना नया राज्य स्थापित किया। 31वीं पीढ़ी बाद बुद्ध के समय में गंगा की घाटी से क्षत्रियों की एक अन्य मंडली इसी प्रदेश में आई। ये क्षत्रिय 13 पीढ़ी तक इस देश का शासन करते रहे। बाद में उत्तरी बर्मा उनके हाथ से निकल गया और उन्होंने दक्षिणी बर्मा के एक नया राज स्थापित किया जिसकी राजधानी श्री क्षेत्र थी। श्री क्षेत्र की स्थिति प्रोम के समीप थी और उसके भग्नावशेष प्रोम से 5 मील दक्षिण में हावजा नदी स्थान पर अब भी विद्यमान है। दक्षिणी बर्मा के समुद्र तट के समीपवर्ती प्रदेशों में बसे हुए मू या तलेंग लोगों में यह अनुश्रुति चली आ रही है कि भारत की कृष्णा और गोदावरी नदियों के मुहानों से ऊपर के प्रदेशों से किसी प्राचीन काल में भारतीय उपनिवेशक समुद्र पार करके वहां आए थे और इरावदी नदी के मुहाने तथा उसके समीपवर्ती प्रदेश में उन्होंने अपनी बस्तियां कायम की थी। अराकान की प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार वहां का पहला राजा वाराणसी के एक राजा का पुत्र था। बर्मा के विविध प्रदेशों में प्रचलित अनुश्रुतियों द्वारा इस बात का संकेत मिल जाता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान वहां भी प्राचीन समय में भारतीयों ने अनेक उपनिवेशों व राज्यों की स्थापना की थी। इस बात की पुष्टि अन्य भी अनेक प्रकार से होती है। बर्मा में अनेक स्थानों पर ऐसे प्रस्तर खंड मिले हैं जिन पर ब्राह्मी वर्णमाला के अक्षर उत्कीर्ण हैं। यह तभी संभव हो सकता था जबकि वहां भारतीयों की बस्तियां स्थापित रही हों। बर्मा में ऐसे पुरातत्व संबंधी अवशेष भी प्राप्त हुए हैं जो उस देश में संस्कृति तथा पाली भाषाओं के प्रचार को सूचित करते हैं। वहां न केवल बौद्ध धर्म का ही प्रचार था अपितु पौराणिक हिंदू धर्मों की भी वहां सत्ता थी। दक्षिणी बर्मा के समुद्र तट के समीपवर्ती प्रदेश में रामंच देश था, जहां के निवासी मो जाति के लोगों ने भारतीय धर्म तथा संस्कृति को अपना लिया था। मो लोगों ने उत्तर तथा पूर्व दिशाओं में बंटकर उत्तरी सियाम और लाओस में भी अपनी शक्ति का विस्तार किया था और इन प्रदेशों में उन्होंने अपने अनेक राज्य कायम किए थे। कतिपय पाली ग्रंथों में इन राज्यों के राजवंशों का इतिवृत्त संकलित है और उनमें इन राज्यों के राजाओं के जो नाम दिए हैं वे भारतीय हैं। मूल लोगों द्वारा स्थापित इन राज्यों के राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने जो बौद्ध बिहार व चैत्य स्थापित किए उनका विवरण भी पाली ग्रंथों में विद्यमान है। मूल लोगों का प्रदेश रामंच प्रदेश दक्षिणी बर्मा में सालवीन के मुहाने तथा उसके समीपवर्ती समुद्र तट के साथ था। उसके उत्तर में पयू जाति का निवास था। पयू लोगों द्वारा आबाद प्रदेश में भारतीय उपनिवेशकों ने एक राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी श्री क्षेत्र थी। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, संघ किस्सा तगांव के राजकुल के एक व्यक्ति द्वारा ही श्री क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन भारतीयों ने उत्तरी बर्मा में संघ किस्सा को राजधानी बनाकर एक भारतीय राज्य की स्थापना की थी, उन्होंने ही आगे चलकर दक्षिणी बर्मा के उस प्रदेश में प्रवेश कर लिया था जहां की पयु जाति का निवास था। पयु जाति के लोगों को भारतीय संस्कृति तथा धर्म के प्रभाव में ले आने में ये भारतीय उपनिवेशक पूर्णतया सफल हुए थे। यही कारण है कि इस क्षेत्र में पयु भाषा के जो लेख मिले हैं वे भी भारतीय लिपि में हैं। संस्कृत और पाली भाषाओं के भी बहुत से लेख वहां से प्राप्त हुए हैं। श्री क्षेत्र के राजाओं के नाम भी भारतीय थे। बुद्ध की मूर्ति के आधार स्थान पर उत्कीर्ण 7वीं सदी का एक लेख श्री क्षेत्र में मिला है जिसमें राजा जयचंद्र वर्मा का उल्लेख है। उससे पहले हरि विक्रम, सिंह विक्रम और सूर्य विक्रम नाम के राजा श्री क्षेत्र के राज सिंहासन पर आरूढ़ हो चुके थे। संघ किस्सा और श्री क्षेत्र के समान अराकान में भी एक भारतीय राजवंश का शासन था। अराकान की पुरानी राजधानियां रामावती और धन्यवती थी, पर बाद में वहां के चंद्र राजवंश ने वैशाली नगर को अपनी राजधानी बनाया। यह वंश श्री धर्म राजा नुजवंश भी कहता था। इसके राजाओं के नाम बालचंद्र, देवचंद्र, धर्मचंद्र आदि थे और 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का इस राजवंश का इतिवृत्त प्राप्य भी है। राजा धर्मचंद्र और वीरचंद्र के तो सिक्के भी उपलब्ध हुए हैं। वैशाली नगरी अब ध्वंस हो चुकी है, पर उनके भग्नावशेष मोहोंग के उत्तर पश्चिम में 8 मील दूर अब भी विद्यमान है। इस स्थान को आजकल वेथली कहते हैं, जो वैशाली का ही अपभ्रंश है। जिन भारतीयों ने उत्तर बर्मा में संघ किस्सा नगरी बसाई थी, संभवतः उन्होंने ही उत्तर तथा पूर्व की ओर भी प्रसार किया था। दक्षिणी चीन के उन्नान प्रांत की सीमा बर्मा के साथ लगती है। वहां भारतीयों का एक उपनिवेश था जिसका नाम गांधार था। इसी के एक भाग को विदेह राज्य भी कहा जाता था। भारतीयों के प्रवेश से पूर्व बर्मा के विविध प्रदेशों में मो तथा पयु जातियों का निवास था। जब भारतीय उपनिवेशक इन जातियों द्वारा आबाद प्रदेशों में बस गए और उन्होंने वहां अपने राज्य स्थापित कर लिए, तो इन जातियों ने भी भारतीयों के धर्म तथा संस्कृति को अपना लिया। बर्मी जाति इस देश में बाद में आई थी। भाषा विज्ञान द्वारा ज्ञात होता है कि बर्मी और तिब्बती भाषाओं में उसी ढंग से साम्य है जैसे कि ईरानी और भारतीय आर्य भाषाओं में है। संभवतः बर्मी जाति का निवास पहले तिब्बत के दक्षिण पूर्वी प्रदेश में था, पर जब 7वीं सदी में सुक्तोंग कचन भस्म पो के नेतृत्व में तिब्बत का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ और इस शक्तिशाली राजा ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए सब और आक्रमण शुरू किए, तो दक्षिणी सीमांत पर निवास करने वाली बर्मी जाति को और दक्षिण की ओर ढकेल दिया गया और धीरे धीरे वह संपूर्ण उत्तरी बर्मा पर छा गई। वहां इस जाति ने अपना राज्य स्थापित किया जिसकी राजधानी पगान थी। बर्मा के भारतीय उपनिवेशों के संपर्क में आकर बर्मी लोगों ने भी भारत के बौद्ध धर्म को अपना लिया और वह भी भारतीय संस्कृति के रंग में रंग गई। दूसरा, बर्मा में बौद्ध धर्म का प्रचार। प्राचीन काल में बर्मा में पौराणिक हिंदू धर्मों का भी प्रचार रह चुका है। इसके संकेत केवल पुरातत्व संबंधी उपनिवेशों से मिलते हैं। वर्तमान समय में वहां के निवासी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और इस भारतीय धर्म के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रभाव भी उन पर विद्यमान है। महावंश में उल्लिखित अनुश्रुति के अनुसार राजा अशोक के समान 3री सदी ईस्वी पूर्व में शोण और उत्तर नामक स्थविर सुवर्ण भूमि में धर्म प्रचार के लिए गए थे। यह पिछले एक अध्याय में लिखा जा चुका है। वहां एक राक्षसी थी जो समुद्र से निकलकर राजमहल में उत्पन्न होने वाले बच्चों को खा जाती थी। जब शोण और उत्तर सुवर्ण भूमि पहुंचे तभी राजमहल में एक बच्चा पैदा हुआ। अश्वरी को देखकर लोगों ने समझा ये भी राक्षसी के साथी हैं। वे शस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर अश्वरों ने उनसे कहा, हम शीलवंत भिक्षु हैं, राक्षसी के साथी नहीं हैं। उसी समय वह राक्षसी समुद्र से बाहर निकली। उसे देखकर लोगों ने बड़ा कोलाहल किया। अस्थवीरों ने अपने योग बल से दुगने भयंकर राक्षस उत्पन्न करके राक्षसी को चारों ओर से घेर लिया। राक्षसी ने समझा यह देश उन्हें मिल गया है, अतः वह डर कर भाग गई। चारों ओर से इस देश की रक्षा की व्यवस्था करके अस्थवीरों ने समागम में ब्रह्मजाल सूत का उपदेश दिया। उसे सुन बहुत से व्यक्तियों ने धर्म और शील को ग्रहण किया। 60,000 लोगों ने धर्म चक्षु खुल गए। 3,500 कुमारों और 1,500 कुमारियों ने प्रवज्ञा ग्रहण की। उस समय से राजकुल में उत्पन्न होने वाले बालकों का नाम अस्थवीर, सोण और उत्तर के नाम पर सोणोत्तर रखा जाने लगा। महावंश 1244-54। राजा अशोक के समय में आचार्य उपगुप्त मोदगली पुत्र त्रिनय की अध्यक्षता में जिन अनेक प्रचारक मंडलों के विविध देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे जाने का वृतांत महावंश में लिखा है, पहले उसकी सत्यता में संदेह किया जाता था, पर सांची और उसके समीप सोनरिया तथा अधरा के स्तूपों में 2री-3री सदी ईस्वी की पूर्व की लिपि में अंकित कितने ही अस्थिकरण्ड मिले हैं, जिनमें उपगुप्त द्वारा भेजे गए प्रचार कमंडलों के कितने ही सदस्यों के नाम हैं। महावंश के वृतांत के अनुसार अस्थवीर मंझिम को हिमवंत देश में प्रचार के लिए भेजा गया था। सोनरिया के स्तूप में सपुरिसस मझिमस को डिड निपुतश कुंडिन पुत्र सत्पुरुष मंझिम का के साथ ही सपुरिसस कोटिपुतस कस्पगोतश स हिमवत चरियस सारे हिमवंत के आचार सत्पुरुष काश्यप गोत्र कोटि पुत्र का भी आया है। ये नाम भी महावंश की कथा की सच्चाई की ओर संकेत करने के लिए पर्याप्त है। अस्थवीर उत्तर और सोण ने स्वर्ण भूमि के किस प्रदेश में जाकर वहां के हजारों निवासियों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया, यह निर्धारित कर सकना सुगम नहीं है। पर सुवर्ण भूमि का पश्चिमी अपरांत बर्मा ही था, और यह कल्पना करना असंगत नहीं होगा कि अशोक के समय में सुवर्ण भूमि के इसी प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। सोण और उत्तर द्वारा वहां धर्म प्रचार के जिस कार्य का प्रारंभ किया गया था वह उनके बाद भी जारी रहा। आंध्र प्रदेश में श्री पर्वत नागार्जुनी कोंड से 2री-3री सदी के बहुत से शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक इच्छा वकुवंशीय श्री वीरपुरी सदत माढ़री पुत्र का है। इसमें तंबपन्न ताम्रपणी के थेरवादी भिक्षुओं के लिए एक विहार बनवाने का उल्लेख है, और यह कहा गया है कि इन भिक्षुओं ने काश्मीर, गांधार, चीन, चिलात, तोसली, अवरंत, बंग, वनवासी, यवन, दमिल, फलूरा, तंब, पन्नी को धर्म में दीक्षित किया था। इस लेख में चिलात शब्द से संभवतः किरात अभिप्रेत है। ये किरात सुवर्ण द्वीप के क्षेत्र के निवासी थे। यह पिछले एक अध्याय में रामायण के एक श्लोक आम मीना शनाश चापी किरात द्वीपवासिनः के आधार पर लिखा जा चुका है। श्री पर्वत के शिलालेख में जिस चिलात में ताम्रपर्णी के भिक्षुओं द्वारा धर्म प्रचार का उल्लेख है वह स्वर्ण भूमि का वही प्रदेश प्रतीत होता है जहाँ की किरात लोगों का निवास था, और ये किरात बर्मा क्षेत्र के मूल निवासी थे। 5वीं सदी से बर्मा में भी ऐसी पुरातत्व संबंधी सामग्री प्राप्त होने लगी है जो इस देश की धार्मिक तथा सांस्कृतिक दशा पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डालती है। पयू जाति द्वारा आबाद प्रदेश के पुराने भारतीय राज्य की राजधानी श्री क्षेत्र के भग्नावशेष आधुनिक प्रोम से 5 मील दक्षिण में हावजा नामक स्थान पर पाए गए हैं। हावजा के समीप माणगन से दो स्वर्ण पत्र अभिलेख मिले हैं जिन पर दक्षिणी भारत की चौथी पांचवीं सदी की कदंब लिपि में पाली भाषा के निम्नलिखित बुद्ध वचन उत्कीर्ण है। ये धम्मा हेतु पब्भवा तेषम हेतु तथागतो आह ते संचयो निरोधो एवं वादी महासमणोति चतवारु इधि धपादा चतवारु सम्म धाना। एक पत्र पर ऊपरी लिखित वचन है और दूसरे पद पर उत्कीर्ण वचन इस प्रकार है। ये धम्मा हेतुपभवा ते समहेतु तथागतो आ ते संचयो निरोधो एवं वादी महासमणोति इति पीसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो। स्वर्ण पत्र के ये अभिलेख सिंघल लंका के पाली त्रिपिटक के हैं जिससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि बर्मा में भी बौद्ध धर्म के उसी संप्रदाय का पांचवी सदी में प्रचार था जो सिंघल तथा दक्षिण भारत के श्री पर्वत आदि में विद्यमान था। हावजा से शिलालेखों के खंड भी मिले हैं जो पाली भाषा में हैं। 1926 ईस्वी में तो वहां से एक ऐसी पोथी भी उपलब्ध हो गई थी जो 20 स्वर्ण पत्रों में लिखी हुई है, यह भी पाली भाषा में है। पयू जाति के प्रदेश के साथ ही दक्षिणी बर्मा में तलैंग जाति का निवास था। वर्तमान समय में इस प्रदेश के बहुसंख्यक निवासी बर्मी जाति के हैं, पर तलैंग जाति के लोगों की अब तक भी वहां सत्ता है। तलैंग जाति के क्षेत्र में भी भारतीयों ने अपनी बस्तियां बसाई थी और वहां की मुख्य नगरियां सूद धर्मावती थातोन और हंसावती तेगू थी। पांचवी सदी तक इस प्रदेश में भी बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया था और थातोन बौद्धों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, पर बौद्ध धर्म के साथ साथ इस प्रदेश में पौराणिक हिंदू धर्म का भी प्रचार था और अनेक ऐसे अवसर भी आते रहते थे जबकि इन धर्मों में विरोध और विद्वेष की अग्नि भड़क उठती थी। बर्मा की पुरानी ऐतिहासिक अनुश्रुति के अनुसार 11वीं सदी के मध्य भाग में पेगू का राजा तिस 1043 से 1057 था जो पौराणिक हिंदू धर्म का अनुयायी था और बौद्धों से विद्वेष रखता था। उसने बुद्ध की मूर्तियों को खाइयों और खड्डों में फेंकवा दिया था। पेगू की एक वणिक कन्या भद्रा देवी बुद्ध की भक्त थी। एक दिन जब वह स्नान करने के लिए सरोवर पर गई तो वहां उसे बुद्ध की एक धातु निर्मित मूर्ति मिल गई। राजा के आदेश को जानते हुए भी वह मूर्ति को अपने साथ ले गई और उसे मंदिर में प्रतिष्ठापित किया। राजा तिस को जब यह मालूम हुआ तो उसे बहुत क्रोध आया, पर भद्रा देवी की अपनी विश्वास पर दृढ़ता से वह प्रभावित हुआ और उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो उसने उससे विवाह भी कर लिया। भद्रा देवी के प्रभाव से तिस ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। पयू और तलैंग जातियों के प्राचीन राज्यों का इतिहास इस समय उपलब्ध नहीं है, पर इसमें संदेह नहीं कि इनके प्रदेशों में भारतीयों ने अपने जो उपनिवेश बसाए थे उनके कारण तथा भारतीय प्रचारकों के उपदेशों को श्रवण कर इनमें बौद्ध तथा पौराणिक हिंदू धर्म का भली भांति प्रचार हो गया और इन्होंने भारत की संस्कृति तथा भाषाओं को भी अपना लिया। सातवीं सदी में बर्मी जाति के उत्तर की ओर से बर्मा में प्रवेश किया था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। धीरे धीरे यह जाति उत्तरी बर्मा पर छा गई। उसकी राजधानी अरिमर्दनपुर पगान थी और 11वीं सदी में उसका राजा अनुरुद्ध अनवरहत था। बर्मी जाति के लोग भी इस समय तक बौद्ध धर्म को अपना चुके थे, पर उनमें बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रचार हुआ था और यह महायान भी वज्रयान में मिश्रित था। वज्रयान में वे सब तत्व विद्यमान थे जो पौराणिक हिंदू धर्म के वाम मार्ग संप्रदाय में थे। तंत्र मंत्र में वज्रयान विश्वास रखता था और बर्मी लोगों में प्रचलित बौद्ध अनुष्ठानों तथा पूजा विधि में भी तांत्रिक क्रियाओं का प्राधान्य हो गया था। हिंदू शिन नामक एक तलैंग भिक्षु ने इस दशा में सुधार किया और पगान के राजा अनुरुद्ध को वज्रयान मिश्रित महायान संप्रदाय को त्याग कर हीनयान को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने में सफलता प्राप्त की। शीन अरहन हीनयान को अस्थवीरवाद संप्रदाय के अनुयायी थे। सिंघल तथा दक्षिणापथ में भी इसी संप्रदाय का प्रचार था। पयु तलैंग और मू लोगों ने भी इसी संप्रदाय को अपनाया हुआ था, पर उत्तर की ओर से बर्मा में प्रविष्ट हुई बर्मी जाति के लोगों में पहले महायान संप्रदाय का प्रचार था। इसे किन प्रचारकों ने महायान का अनुयायी बनाया यह ज्ञात नहीं है। संभवतः यह प्रचारक स्थल मार्ग द्वारा उत्तरी बर्मा में गए थे, क्योंकि महायान का प्रचार प्रधानतया इसी क्षेत्र में था। बर्मा के इतिहास में राजा अनुरुद्ध का स्थान अत्यंत महत्व का है। उसके समय में वहां हीनयान का बहुत उत्कर्ष हुआ और बौद्ध धर्म की जिस उन्नति का सूत्रपात हुआ वह अब तक भी जारी है। बर्मा में बौद्ध धर्म का प्रधान स्थान है और उसके माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रभाव वहां विद्यमान है। वहां के बौद्ध पाली भाषा के त्रिपिटक का अध्ययन करते हैं, जो भारत की ही भाषा है।